आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने तस्मानिया स्थित डाउजिंग पॉइंट डेरविंट बैरिक्स का दौरा किया है और घोषणा की है कि इस रक्षा परिसर की जमीन को नए आवास निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। होबार्ट के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र को फेडरल सरकार पहले ही रक्षा बल की अतिरिक्त संपत्तियों की बड़ी बिक्री योजना के तहत चिन्हित कर चुकी थी। करीब 31 हेक्टेयर में फैले इस साइट पर 1000 तक नए घर बनाए जाने की योजना है, जिनमें सामाजिक और किफायती आवास भी शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 12 महीनों का समय लगेगा। इस बीच सिडनी में कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा कि विपक्ष की टैक्स नीति अगले 10 वर्षों में लगभग 250 अरब डॉलर का अतिरिक्त कर्ज पैदा कर सकती है। उन्होंने विपक्ष नेता एंगस टेलर के बजट जवाबी भाषण को बजट घाटे का नुस्खा बताते हुए कहा कि इससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर कर्ज के ब्याज का बोझ अरबों डॉलर तक बढ़ सकता है। डॉक्टर चामर्स ने कहा कि पिछले सप्ताह एक तरफ लेबर सरकार थी, जिसने अलग अलग तरीकों से 5 बार कर कटौती दी, जिससे औसत कर्मचारी को सालाना लगभग 2800 डॉलर की राहत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एंगस टेलर का ऐसा बजट जवाब था जिसकी ना तो फंडिंग स्पष्ट है और ना ही लागत का पूरा हिसाब। उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय वन नेशन पार्टी के दबाव को रोकने की कोशिश ज्यादा लगती है। और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने अभी तक सरकार की ईंधन टैक्स राहत योजना को बढ़ाने पर स्पष्ट तौर पर हाँ नहीं कहा है, लेकिन इसे खारिज भी नहीं किया है। विपक्ष फिलहाल इंतजार करने के पक्ष में है, हालांकि उसका कहना है कि महंगाई को संतुलित करने वाले कुछ उपाय शामिल किए बिना वे इस योजना का समर्थन करने को लेकर आशंकित हैं। सरकार की ओर से ईंधन उत्पाद शुल्क में 3 महीने की कटौती अप्रैल की शुरुआत से लागू हुई थी, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 26.3 सेंट की कमी आई थी। वहीं अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के खिलाफ नस्लवाद, नफरत और हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए चल रही संसदीय जांच में सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ये फेडरल संसदीय जांच जॉइंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन अबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर अफेयर्स द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें लेबर पार्टी, गठबंधन दल और स्वतंत्र सांसद शामिल हैं। अब सुझाव भेजने की नई अंतिम तारीख अगले महीने की शुरुआत तक तय की गई है, जबकि अगस्त तक देश भर में सार्वजनिक सुनवाइयां आयोजित की जाएंगी। NITV न्यूज से बातचीत में अबोरिजिनल लेबर सीनेटर जाना स्टुअर्ट ने कहा कि लोग अपनी बात लंबी चिट्ठियां, दस्तावेजों, कविताओं, कलाकृतियों, कहानियों या अपने किसी ढंग से समिति तक पहुंचा सकते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत में फैले नए इबोला प्रकोप में अब तक कम से कम 87 लोगों की मृत्यु की खबर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने समुदाय में संक्रमण तेजी से फैलने की चेतावनी दी है। बीमारी को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मी जांच और संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। इसी बीच समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने इतुरी की राजधानी बुनिया में स्थानीय लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने अपने डर और चिंता व्यक्त किए। इबोला एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो उल्टी, खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैल सकती है। ये बीमारी दुर्लभ जरूर है, लेकिन बेहद गंभीर और कई मामलों में जानलेवा साबित होती है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा में जनसभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर निशाना साधते हुए मिस्टर नेफ्यू से जुड़ी 24 संपत्तियों की जांच के संकेत दिए हैं। उन्होंने 2021 चुनाव के बाद हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया है। वहीं भारत में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 227 किलो से अधिक कैप्टागन ड्रग जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 182 भारतीय करोड़ रुपए बताई जा रही है। कैप्टागन एक खतरनाक नशीला स्टिम्युलेंट पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर किया जाता है। दिल्ली और गुजरात में हुई कार्रवाई में एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। इसी के साथ 17 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।